ओम शांति। समान श्रेष्ठ स्थिति का आधार है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये केवल किसी भाषण का टाइटल नहीं है, इसका संबंध हम सब के जीवन से है और हमारी उन्नति से है और हमारे सम्मान युक्त जीवन से है। प्यारे बाबा हमको हमेशा बताते हैं कि बच्चे पहले अपने सम्मान की सीट पर सेट हो, फिर ही कोई कार्य शुरू करो। कहने को तो ये बहुत सिंपल बात है, लेकिन आप देखेंगे इससे व्यक्ति की सारे जीवन में, हर जीवन के पहलू में बहुत फर्क पड़ जाता है। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे कि एक पुलिसमैन है जिसकी ड्यूटी है कि किसी चौक में खड़े होकर ट्रैफिक को कंट्रोल करना। वही पुलिसमैन जब अपने स्थान पर खड़ा होता है तो हाथ से किसी बड़े से बड़े व्यक्ति की कार को भी रोक सकता है, लेकिन तभी कर सकता है जब वो अपने स्थान पर खड़ा है। वही पुलिसमैन अगर साइड में खड़ा हो तो उसकी बात कोई नहीं मानेगा। इसी प्रकार से कोई राजा है तो राजा तो हर वक्त ही राजा है, दिन रात राजा है, अपने घर में राजा है, महल में राजा है, लेकिन जब उनको राज्य कारोबार चलाना होता है तो राज सिंहासन पर बैठते हैं, तभी उनके अन्य कर्मचारी जो हैं वो सब दर्जा बदर्जा बैठते हैं और जो वो हुक्म करते हैं उसको मानते हैं। ऐसे ही आप हर चीज में देख लीजिए, भारत की मान लीजिए पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, तो पार्लियामेंट के स्पीकर, उनका जो स्पीकर का रोल है वो तभी चलेगा जब वो स्पीकर की कुर्सी पर आके लोकसभा में बैठेंगे, तब वो जो कहेंगे सारे, चाहे वहां मिनिस्टर बैठे हों, प्राइम मिनिस्टर हों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हों, वो सब उनका जो वो कहेंगे उसको मानेंगे। इससे पता लगता है कि हम, यद्यपि हमारा क्वालिफिकेशन भी हो, हमारे अंदर गुण भी हों, विशेषताएं भी हों, लेकिन अगर हम अपने सम्मान की सीट पर नहीं हैं तो उनका हम पूरा पूरा उपयोग नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखेंगे कि बाबा कहते हैं अपनी स्थिति, ऊंची स्थिति और अपने सर्वश्रेष्ठ सम्मान की स्मृति में रह करके जो भी कार्य करना है वो करें। और इसके लिए सबसे पहले सवेरे सवेरे अमृत वेले, जैसे आप देखेंगे कोई शंकराचार्य हैं या कोई भी व्यक्ति है तो सुबह सुबह अपना जो कुछ उनको कर्मकांड करना होता करते हैं, अपने माथे पर स्वयं भी तिलक लगाते हैं, अपनी वेशभूषा धारण करते हैं, अपने आसन पर बैठते हैं, तब वो अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चों को तो कितने सम्मान प्राप्त हैं, शायद ही दुनिया में किसी को इतनी डिग्रियां प्राप्त हों और वो सम्मान कितने श्रेष्ठ हैं और उनको देने वाला कौन है। तो इस बात की स्मृति रखने से हमारे अंदर शक्ति आती है, पावर आती है, कॉन्फिडेंस आता है, और फिर हमारी जो भी कर्म है, चाहे वो साधारण भी हैं, विशेष हैं, मीडियम हैं, वो सब उसी के अनुसार चलते हैं। अगर कोई व्यक्ति के पास बहुत से सम्मान हो भी, लेकिन उसको विस्मृति हो, वो उनको भूला हुआ हो, तो फिर वो अथॉरिटी होते हुए भी साधारण व्यक्ति की तरह काम करेगा और दूसरे भी उसको साधारण व्यक्ति ही समझेंगे। दुनिया के अंदर तो बाहर का पोशाक जो होता है, यूनिफॉर्म जो होता है, ड्रेस जो होता है, लोग वो पहनते हैं ताकि सबको पता लग जाए कि मेरा पोजीशन क्या है, मेरा पोस्ट क्या है। आप देखते हैं मिलिट्री के अंदर, पुलिस के अंदर अनेक प्रकार के स्टार्स बताए जाते हैं, जिसके व्यक्ति देख लेता है किसका पोस्ट क्या है, अपना अपना उनका यूनिफॉर्म होता है। धर्म के क्षेत्र में भी आप देखते हैं कि अलग अलग तरीके के पोशाक, वेशभूषण, अनेक प्रकार के तिलक भी हैं भारत में, जिससे किसी का पोजीशन और पोस्ट पता लगता है। पर बाबा कहता है, मेरे बच्चे तो बाहर से साधारण ही रहते हैं, लेकिन हमारा सम्मान शारीरिक नहीं है, एक जन्म का नहीं है, हमारा सम्मान सम्मान रूहानी है और अविनाशी है, क्योंकि इन सम्मान को देने वाला परमपिता परमात्मा भी अविनाशी है। तो आइए जरा विचार करें, दो चार सम्मान को लेकर के हम देखें कि हमारे को कितने श्रेष्ठ सम्मान स्वयं परमपिता परमात्मा ने दिए हैं। सबसे पहला सम्मान, अगर हम शुरू करने के लिए ये कहें कि हम बाबा के सर्वश्रेष्ठ कुल ब्राह्मण कुल के बच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। अब आप देखेंगे दुनिया में आज भी ब्राह्मण हैं और आज भी निमित्त मात्र नामधारी ब्राह्मण हैं, फिर भी क्योंकि वो ब्राह्मण हैं इसलिए आज के समाज में भी कोई भी श्रेष्ठ कार्य करना हो, बल्कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो ब्राह्मण के द्वारा कराए जाते हैं। आज भी ब्राह्मण को दक्षिणा देकर, ब्राह्मणों को खिला करके लोग बहुत अपने आप को धन्य मानते हैं और बहुत पुण्य का कार्य समझते हैं, ये तो ब्राह्मण का टाइटल है। लेकिन जो सच्चे शिव परमात्मा के ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, अब बाबा कहते हैं, उन्होंने तो बाबा कहते हैं कि विश्व का ही परिवर्तन किया। ब्रह्मा जी ने कल्प के आदि में यज्ञ रचा, गीता में भी लिखा हुआ है, और ब्रह्मा जी के साथ ब्राह्मण भी थे। हमेशा यज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा ही रचाया जाता है और दुनिया के यज्ञ तो मटेरियल यज्ञ होते हैं और कार्य के लिए होते हैं, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा तो शिव बाबा ने ज्ञान यज्ञ रचाया, हम जानते हैं। तो उससे कितना श्रेष्ठ कार्य हुआ, सारी प्राणी दुनिया की आहुति पड़ गई, सारी नई दुनिया स्थापित हो गई, देवताएं भी उस यज्ञ से उत्पन्न हुए, गीता में बताया गया है, और हमारा ब्राह्मण का इतना महत्व है कि आज भी भगत देवताओं की महिमा करने से पहले ब्राह्मणों की करते हैं। ब्राह्मण देवी देवाय नमः, ये तो दुनिया की बात है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है। पहली बात है मास्टर ज्ञान सागर, और कौन सा ज्ञान, जो ज्ञान बाबा कहता है दुनिया के हर प्रकार के ज्ञानों से बिल्कुल नया है, और जो नॉलेज इज पावर कहा जाता है, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है, जिसमें इतनी शक्ति है, कि वो ज्ञान अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। हम सब जानते हैं, डिटेल बताने की तो आवश्यकता नहीं है, तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान, जिससे व्यक्ति जो है हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। उसको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको पता रहता है कि क्या होने वाला है और मुझे उसमें क्या करना है। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि दूसरा ब्राह्मण की क्वालिफिकेशन है पावरफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान, और वो कोई साधारण शक्तियां नहीं है। बाबा कहते हैं अनेक प्रकार की शक्तियां जिनके सही समय पर प्रयोग से और सही शक्ति के प्रयोग से, बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जो हैं किसी भी प्रकार की कमी कमजोरी, किसी भी प्रकार की ऑपोजिशन को आसानी से पार कर लेते हैं, क्योंकि शक्ति के आगे कोई कमजोरी ठहरती नहीं। जैसे हेल्दी व्यक्ति को रोग नहीं सताता, तो हर किसी भी प्रकार का रोग हो, चाहे वह मानसिक रोग हो, चाहे वह शारीरिक रोग हो, या सामाजिक प्रकार का कोई भी चीज है, ब्राह्मण के लिए वह खेल की तरह है। इसी तरह बाबा कहते हैं मास्टर स्नेह के सागर हैं, तो रूहानी स्नेह ब्राह्मण का प्रत्यक्ष है कि सारे विश्व में जो जो ब्राह्मण परिवार है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का परिवार है, वो एक विचित्र तरह का परिवार है। दुनिया भी हैरान है, यहाँ तक कि हमें अलौकिक वो मानते हैं कि हमसे न्यारे हैं, हमारे से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि अलौकिक हमारा जीवन बन जाता है। फिर बाबा कहते हैं ब्राह्मण ही संगम युग पर होते हैं, ब्राह्मण की ही चढ़ती कला है, ब्राह्मण ही खुशी को प्राप्त करते हैं। तो कहने का भाव ये है कि एक ब्राह्मण के अंदर इतने टाइटल बाबा ने हमको दिए हुए हैं कि बाबा कहते हैं आप यहाँ बैठे बैठे अपनी मनसा द्वारा, अपनी संकल्प सिद्धि द्वारा कुछ भी कर सकते हो, तो इस प्रकार प्रकृति को जीत सकते हो। तो बाबा ने हमको ये सारे श्रेष्ठ टाइटल दिए हैं, केवल हम उनकी स्मृति में रहें। इसलिए बाबा कहते हैं कि सुबह अमृत वेले सबसे पहले अपने समानों की स्थिति स्मृति में रहो, समानों को स्मृति में लाओ। बाबा ने जिसने समान दिए हैं, और बाबा ने ये भी कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ सारा संगम युग पर, लास्ट घड़ी तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये जो परमात्मा का हमें साथ है, इसको भी हमें स्मृति में लाना है, तब तो हमारी शक्ति जो है, हमारी उमंग उत्साह जो है, हमारा कुछ भी कार्य करने की क्षमता जो है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जैसे हर व्यक्ति अपने टाइटल को याद रख के चलता है, तो फिर उसके अंदर कुछ भी कार्य कर रहा होगा तो उसको स्मृति रहेगी मैं फलाना हूँ। अब जैसे कोई राजा है, तो राजा को स्मृति है मैं राजा हूँ, तखत पर बैठकर सिंहासन पर बैठकर तो राज्य कारोबार चलाता है, लेकिन अपने जीवन के अंदर भी उसको कैसे बोलना है, उसको कैसे राज्य अपने राजेपन के सम्मान को रखना है, उसको भूलेगा नहीं। राजा कभी किसी से मांगता नहीं है, राजा किसी के आगे झुकता नहीं है, उसके आगे सब झुकते हैं, उसी से सब मांगते हैं। राजा को कहीं किसी का सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं होती है, वो दूसरों को सहयोग देता है। ये तो दुनिया का राजा है, लेकिन बाबा कहते हैं जो मेरे स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं, जो अपनी इंद्रियों के राजा हैं, अर्थात बाबा कहते हैं जो आत्म स्थिति में स्थित होकर के अपने सारी इंद्रियों के द्वारा जब चाहे जैसा चाहे कार्य करवा सकते हैं, तो उनका तो कहना ही क्या है। बाबा कहते हैं उनके तो पांव धरती पर नहीं पड़ते, वो तो फरिश्ते की तरह उड़ते रहते हैं। और बाबा ने हमको इतनी शक्ति दी है कि दूसरों की भी, बाबा कहते हैं आप ना केवल उड़ते हो बल्कि दूसरों को भी उड़ाने की आपके पास शक्ति है। आप ना केवल खुश रहते हो पर दूसरों को भी प्रसन्नता दे सकते हो। कोई कमजोर आत्मा है उसको आप सहयोग देकर शक्तिशाली बना सकते हो। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बाबा ने कहा है, मुरलियां आपने बहुत सुनी हैं, पढ़ाई का कोर्स तो पूरा हो गया है, सुन सुनकर सुनाने वाले भी बन गए हैं हम, इसलिए और क्या करना है अब। तो बाबा कहते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा का एक स्लोगन था, पा लिया जो था पाना, काम क्या बाकी रहा। तो क्या वो स्लोगन सिर्फ ब्रह्मा बाबा का था या हम ब्राह्मणों का भी है कि पा लिया जो था पाना, काम क्या बाकी रहा। अब हमें पढ़ाई की, अपने योग लगाने की, ये तो बाबा कहते हैं बच्चे भी आज कर रहे हैं, लेकिन हमको हमको क्या करना है, बाकी काम क्या रहा। तो बाबा कहते हैं, समान में रह करके बाकी काम इतना ही है कि हम संगम युग की जो मौज है, संगम युग की जो सुहेज है, संगम युग के जो मिलन का सुख है, पाना पा लिया पाने का भाव अर्थ ही यही है कि जैसे नदियों का सागर से मेला होता है, वो तो सबसे प्रसिद्ध मेला है, तो हम आत्माओं का बाबा के साथ मिलन अर्थात मेला, हर वक्त हम बाबा के साथ मिलन में रहें और खुशियों के झूले में झूलते रहें। बाबा ने कहा है, मैंने आप बच्चों को एक झूला नहीं दिया, अनेक प्रकार के झूले दिए हैं, प्रेम के झूले में झूलो, आनंद के झूले में झूलो, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो। अब बाबा कहते हैं, झूला ऐसा दिया है कि कोई आपको हिलाएगा भी तो झूले को हिलाएगा। यानी कई बार ब्राह्मण सोचते हैं ना कि इसने मेरे को हिला दिया, मुझे डिस्टर्बेंस कर दिया, तो बाबा कहता है आपको तो कोई टच भी नहीं कर सकता, आप तो झूले में बैठे हो, हलाएगा तो आपको झूले को हलाएगा, उससे आप और भी ज्यादा झूलोगे। तो हमें बाबा ने ऐसी सेफ्टी, ऐसी छतर छाया, ऐसी परिस्थिति प्रदान की है जो संगम पर ही मिल सकती है। बाबा कहता है देवताओं से भी ज्यादा, क्योंकि आप ईश्वरी संतान है, सर्व प्राप्तियां, सर्व गुण, सर्व शक्तियां, सर्व खजानों से हम भरपूर हैं। लेकिन कोई व्यक्ति खजानों से भरपूर हो परंतु उस समय जिस समय आवश्यकता उसके पास खजाने का कुछ हिस्सा ना हो, तो इस प्रकार से फील करता है जैसे उसके पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि सामने वाला भी कहता है, हम कहें किसी को हम बहुत खजानों के मालिक हैं, लेकिन आपको देने के लिए मेरे पास अभी कुछ नहीं है, तो मानेगा कि आप खजानों के मालिक हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, अगर हम समान की स्थिति में रहेंगे तो अपने उपलब्धियों को प्रयोग कर सकेंगे, उपयोग में ला सकेंगे, वरना वो लॉकर में ही पड़े रहेंगे। हमारी खुशी बहुत है, खुशी के खजाने भरपूर हैं, लेकिन हमने खुशी को लॉकर में रखा हुआ है, तो क्या होगा परिस्थिति पर, रोज की दिनचर्या में तो वो खुशी प्रकट नहीं होगी ना। जब हम खुश नहीं रहेंगे तो दूसरा कैसे खुश दूसरे को कैसे खुश कर सकेंगे। इसलिए आजकल बाबा कहते हैं कि हमारे को अपने लिए और सेवा के लिए और कुछ नहीं करना है। जैसे बाबा कहते हैं, अब आपको बोल करके सेवा करने का समय समाप्त हो गया, अब आपको बड़े बड़े प्रोग्राम करके सेवा का समय समाप्त हो गया, अब हमको ये देखना है कि जो आत्माएं दूर से दूर हैं, जो कभी हमारे सामने भी नहीं आएंगी, उनकी भी हमें सेवा करनी है और बिना बोले हमारे चेहरे और चलन से सेवा हो। अब उसका एक ही तरीका है, तो वो क्या है कि जैसे किसी के पास खजाना होता है तो उसके चेहरे से टपकता है। आप देखेंगे कोई डॉक्टर भी होता है, बहुत अनुभवी डॉक्टर होता है, जिसने सैकड़ों ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए होते हैं, उसके चेहरे से भी कॉन्फिडेंस झलकता है, और कोई पेशेंट जाता है तो उसको महसूस होता है कि ये डॉक्टर मेरा इलाज ठीक ठाक कर देगा। तो चेहरा, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, तो तो बाबा कहते हैं आपके नैन रूहानियत के हों, आपकी रूहानी मुस्कुराहट हो, अविनाशी हो, आपके चेहरे के अंदर जो प्राप्तियां हैं वो झलकें। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब हमें प्रैक्टिकल में बस स्मृति रखनी है अपनी प्राप्तियों की, अपने टाइटल्स की, अपने सम्मान की। दुनिया के अंदर किसी को कोई डिग्री भी मिल जाए, किसी को डॉक्टरेट की डिग्री ही मिल जाए, इतना खुश हो जाता है, और कहीं सरकार किसी को पद्म श्री या वीर चक्र आदि दे दे तो कितना खुश हो जाता है वो। तो बाबा कहते हैं आपकी तो सम्मान की पूरी किताब बन सकती है। और रोज ही बाबा हमको वरदान देते हैं नए नए, दुनिया के अंदर भक्ति में एक वरदान लेने के लिए कितनी कितनी लोग तपस्या करते हैं। और बाबा कहते हैं सभी सम्मान इकट्ठे काम करते हैं, आपके जो गुण हैं सर्व गुण चाहिए, एक भी गुण कम ना हो, तो सब हमारे टोटल सम्मान जो हैं उनको हम अपने मन में रखेंगे तो बाबा कहते हैं आप मेरी तरह ही मास्टर रचेता बन जाओगे। और मास्टर रचेता क्या नहीं कर सकता, रचेता का काम होता है नई रचना को रचना। तो जब हम नई रचना को रचने में बिजी हो जाते हैं तो फिर प्राणी तो अपने आप ही अंत हो जाता है, उसका समाप्त हो जाती है। तो आजकल बाबा यही कह रहे हैं कि अब मेहनत जो करनी थी, जो पढ़ाई करनी थी, जो पढ़ाई को रिवाइज करना था वो सब कर लिया, बाबा ने कहा फोर्स का कोर्स भी कर लिया, अब क्या करना है। तो केवल बाबा कहते हैं जो कुछ हमारे पास है बुद्धि में है उसको मन में ला करके, जैसे मन में संकल्प उठते हैं उस एक भी संकल्प में वो हमारा सारे सम्मान समाये हुए होने चाहिए। जैसे एक ही चावल के दाने को आप पतीले से निकालेंगे आपको पता लग जाएगा वो पूरी तरह पका है या नहीं है। इसी प्रकार से मन का एक भी संकल्प है हमारा, उसमें आप देखिए कि उसके अंदर यथार्थ है, उसके अंदर स्नेह है, उसके अंदर शक्ति है, उसके अंदर कल्याण का भाव है, उसके अंदर कोई कमी कमजोरी का, संशय का, डाउट का अंश तो नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमारे जो मन में संकल्प है वैसे ही हमारे वचन होने चाहिए। तो मन में संकल्प एक ही अगर हम रख लें, बाबा ने कहा लंबी चौड़ी बात नहीं है, हर वक्त अपने सम्मानों को एक्टिव रखने के लिए एक ही ध्यान रखें कि मुझे सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। ये तो मन का ही काम है ना। अब आप उसको सुबह से लेकर ट्राई करें, आपको बहुत आत्माएं मिलती हैं, व्यक्तिगत भी मिलती हैं, संगठित रूप में भी मिलती हैं, ब्राह्मण भी मिलते हैं, ब्राह्मणों में भी श्रेणियां हैं, उसमें क्षत्रिय भी होंगे। लेकिन क्या मैं आत्मा, जैसे हमारा बाबा सबको जानते हुए बाबा कहते हैं, अभी ताजा मुरली में भी बाबा ने बताया है कि मैं जब तक रिजल्ट नहीं निकलता, मैं हर जैसे टीचर होता है रिजल्ट नहीं निकलता तब तक हर स्टूडेंट को स्टूडेंट ही समझता है, उसमें उम्मीद रखता है, कमजोर स्टूडेंट को और ज्यादा ध्यान रख के पढ़ाता है। तो क्या मैं आत्मा जिसका जो मास्टर कल्याणकारी हूँ और जिसने हर वक्त सबके लिए कल्याण की भावना शुभ कामना शुभ भावना रखनी है, तो किसी को भी देखकर मेरे अंदर उसकी कमी कमजोरी तो दिखाई नहीं पड़ती। क्योंकि जिसमें कमी कमजोरी देखने की संस्कार हो जाए वो अपनी भी कमी कमजोरी ही देखता रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं बस शुभ भावना शुभ कामना मन में रखो और उसी दृष्टि से हर एक को देखो। जैसे कोई हरी आनेक पहन लेता है तो उसको हरा ही हरा दिखता है, हमने शुभ भावना शुभ कामना का ऐनक लगाया हुआ है और हर एक को शुभ ही शुभ सोचना है, उस हर एक का शुभ सोचना है। जो अपना शुभ नहीं भी सोच रहा उसको भी शुभ ही सोचना है। ये अगर हम करते हैं तो समझिए कि हमने सारे सम्मानों का सार अपने अंदर रखा हुआ है, उससे नेचुरली हमारी स्थिति श्रेष्ठ रहेगी, हमारी मनसा श्रेष्ठ रहेगी, हमारी वाचा भी श्रेष्ठ रहेगी और कर्मणा भी श्रेष्ठ रहेगी। मनसा के द्वारा हम अन्य आत्माओं को शक्ति प्रदान कर सकते हैं, वाचा थोड़ी बहुत भी जो करें उसके द्वारा हम उसको नॉलेजफुल बना सकते हैं, और कर्मणा के द्वारा जैसे बाबा ने कहा है कि हम अपनी कर्मणा के द्वारा उनको श्रेष्ठ विश्व परिवार का श्रेष्ठ जो आत्मा में स्नेह होता है उसका अनुभव करा सकते हैं, जिसमें निस्वार्थ होता है, अनासक्त होता है और सबके लिए कल्याण और रहम का भाव होता है। सार में हम यही कहेंगे कि अपने स्वमानों को साथ लेकर चलना इस प्रकार से है जैसा कोई अपने खजानों को, अपनी शक्तियों को, अपने गुणों को साथ रख के चल रहा है और उसको प्रयोग में ला रहा है। इसलिए बाबा ने कहा है अध्ययन योगी नहीं बनो, अनुभवी हैं, जो अनुभव किया है उस अनुभव को यूज में लाएं, क्योंकि संगम पारी ये कर सकते हैं और दूसरों को भी अनुभव का अनुभव कराएं, खुश रहें, खुशी बांटें, आगे बढ़े, आगे बढ़ाएं, उड़ते रहें और उड़ाते रहें। तो इससे हमको बहुत प्रसन्नता भी होती है और हमें नेचुरल तौर पे हमारा जमा होता है, दूसरों का हमें आशीर्वाद बिना बोले उनकी दुआएं मिलती हैं, ये बहुत बड़ी शक्ति है, और हर एक का सहयोग प्राप्त होता है, कोई भी हमारे साथ ईर्ष्या द्वेष करेगा ही नहीं, क्योंकि उसका जड़ यही होता है कि हम अपने अंदर मैं का भाव लाते हैं तो दूसरे ईर्ष्या द्वेष करते हैं। अब हमारी दादी जी से या हमारी अन्य दादियों से कोई ईर्ष्या द्वेष करेगा, कोई मम्मा से ईर्ष्या द्वेष करेगा कि मम्मा मम्मा क्यों है या ब्रह्मा बाबा क्यों है, आपस में ईर्ष्या द्वेष कर लेते हैं, क्योंकि उसमें फिर अपने समान याद ना करके दूसरे के समानों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तब बाबा ने कहा जो भरपूर होता है वो हिलता नहीं है, जैसे किसी सूटकेस को पूरी तरह से भर लेते हैं तो हिलता नहीं है। तो बाबा कहते हैं स्वमानों से मन को भरपूर रखेंगे तो सदा हम खुशी में नशे में रहेंगे, सदा उमंग उत्साह में रहेंगे और हमारे साथ वाले भी उसी प्रकार से उमंग उत्साह में रहेंगे। तब बाबा ने कहा हुआ है कि निराकार में शिव बाबा को साथ रखो और साकार में बाप दादा को साथ रखो तो हमारे शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना सबके लिए रहेगी ही रहेगी और हमारी निरंतर सेवा भी होती रहेगी और सुउन्नति भी होती रहेगी और हम सब संपन्नता की ओर जल्दी से पहुंचेंगे। ओम शांति।